नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की दो दिन की यात्रा पर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में सीमा पार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। कश्मीर को भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग बताया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी अधिकारियों के अत्याचारों के खिलाफ आज व्यापक विरोध प्रदर्शन। भारत ने जन स्वास्थ्य आपात स्थिति से निपटने के लिए केन्या को 4.5 टन चिकित्सा सामग्री भेजी। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ लगातार 12वीं रात हमले किए। दोनों पक्ष नागरिक बुनियादी ढांचे को भी निशाना बना रहे हैं। और 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशर डान और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सॉरेन ग्रिंडियानो से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 29 तारीख से मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रपति मुर्मू की यात्रा इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र के साथ जुड़ाव बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उत्तर मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गॉर्डोना सियोनोस्का दावकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कोपिये में आकाशवाणी संवाददाता शुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दावकोवा ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं।
What is the most important?
सबसे महत्वपूर्ण और गर्व की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला है। मैं पहले से ही भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिकता से प्रभावित थी। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलकर मैं और अधिक प्रभावित हुई हूँ।
With deep feelings, emotional intelligence.
भारत ने सीमा पार आतंकवाद को शासन की नीति के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की है और दोहराया है कि कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग बना रहेगा। ये टिप्पणियां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्राकृतिक संसाधनों के संचालन पर कल हुई उच्च स्तरीय खुली बहस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उच्च स्तरीय बहस का दुरुपयोग करके झूठी बयानबाजी कर रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग रहा है और हमेशा रहेगा, तथा पाकिस्तान इस संवैधानिक और कानूनी वास्तविकता को जानबूझकर नजरअंदाज करता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्वैच्छिक बंद और चक्का जाम हड़ताल जारी है। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लोगों से आज पूरी ताकत के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है, ताकि उनकी मांगों को लागू करने का दबाव बनाया जा सके और आंदोलन के दौरान पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना की जाए। पाकिस्तानी विश्लेषक ओम प्रकाश दास ने बताया है कि चक्का जाम का आह्वान बहुत बड़ी घटना है।
यूजेके में जो अवामी एक्शन कमेटी ने एक शक्ति प्रदर्शन का आह्वान दिया है अपने लोगों को, ये बहुत ही एक बड़ी घटना है, क्योंकि जैक को ऐसा लगा है कि पाकिस्तानी हुक्मरान ने उनको धोखा दिया। उन्होंने ये बयानबाजी किया कि जैक के साथ बात हो गई है, बात चल रही है और आगे प्रोटेस्ट खत्म होने हो रहा है। जैक ने ये बयान दिया, सरकार के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई है।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। केन्या में भारत के उच्चायुक्त डॉक्टर आदर्श स्वाइका ने कल नैरोबी में स्वास्थ्य मंत्री एडन डवेल को इबोला की रोकथाम के लिए 4.5 टन चिकित्सा सामग्री की पहली खेप सौंपी। इस चिकित्सा सहायता में पीपीई किट, जांच किट, इंफ्रारेड थर्मामीटर, फेस शील्ड, मजबूत सुरक्षात्मक जूते और अन्य संक्रमण निवारक सामग्री शामिल है। भारत ने हाल के महीनों में अफ्रीका के प्रभावित क्षेत्रों में रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को इबोला संक्रमण से निपटने के लिए 45 टन से अधिक चिकित्सा सहायता प्रदान की है। अमेरिका की सेना ने लगातार 12वीं रात ईरान पर हवाई हमले किए। दोनों देशों के बीच संघर्ष तेज होने के साथ नागरिक बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना है जिससे वह समुद्री मार्गों से गुजरने वाले नागरिक और व्यावसायिक जहाजों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। ये हमले ऐसे समय में किए गए हैं जब अमरीका होर्मुज जलडमरू मध्य पर फिर से नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य में किसी जहाज पर हमला करेगा तो उसके जवाब में अमरीका ईरान के पुल या बिजली संयंत्र को निशाना बनाएगा। वहीं ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा है कि उनका देश जवाबी कार्रवाई की नीति अपनाएगा। अमरीका और सऊदी अरब ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे खाड़ी देश सऊदी अरब को नागरिक परमाणु कार्यक्रम विकसित करने की अनुमति मिल जाएगी। अब इस समझौते को समीक्षा के लिए अमरीकी संसद में भेजा जाएगा। हालांकि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी वर्तमान में संसद के ऊपरी और निचले सदनों पर नियंत्रण रखती है, फिर भी दोनों पक्षों के कुछ सांसद इस समझौते का विरोध कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
समझौते का लिखित प्रारूप सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन अमेरिकी मीडिया ने बताया कि इससे सऊदी अरब को भविष्य में यूरेनियम संवर्धन करने की अनुमति मिल सकती है जिसका उपयोग बिजली संयंत्रों के ईंधन के रूप में और परमाणु बम बनाने में भी किया जा सकता है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने बताया कि सहयोग समझौते के साथ साथ एक द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। सऊदी सरकार ने भी एक बयान जारी कर कहा कि यह समझौता ऊर्जा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच मौजूदा सहयोग का विस्तार है। यह समझौता सऊदी नेता के पिछले नवंबर में वॉशिंगटन यात्रा के बाद हुआ है। यह घोषणा अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच आई है। सऊदी अरब लंबे समय से अमेरिका का सहयोगी रहा है और कई अमेरिकी सैन्य अड्डों की मेजबानी करता है जिन पर ईरानी हमले हुए हैं। इससे दो दिन पहले ही यमन में ईरान के सहयोगी संगठन हौथी ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी की घोषणा की थी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में मूसलाधार वर्षा के बाद आई बाढ़ ने बाढ़ी तबाही मचाई है। बाढ़ के कारण कई घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान जलमग्न हो गए हैं। पानी में फंसे कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। वर्जीनिया के गवर्नर पैट्रिक मॉरिसी ने बताया है कि कल खोज अभियान के दौरान कुछ निवासी लापता थे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं चिराग झा।
प्रियंका, सबसे पहले बात 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की करते हैं जिसका शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस वर्ष केवल 10 खेल शामिल होंगे। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। वहीं 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज हरारे में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। टीम इंडिया की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। इस बीच चीन के चांगझोऊ में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुड्डा को पराजित किया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर इस दौर के लिए जगह बनाई। खेल समाचार में फिलहाल इतना ही।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में सीमा पार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी अधिकारियों के अत्याचारों के खिलाफ आज व्यापक विरोध प्रदर्शन। भारत ने जन स्वास्थ्य आपात स्थिति से निपटने के लिए केन्या को 4.5 टन चिकित्सा सामग्री भेजी। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ लगातार 12वीं रात हमले किए। और 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू। इसके साथ ही विश्व दर्पण अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।